के एपिसोड में बड़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एट द डे ऑफ जजमेंट अहले ईमान के साथ क्या मामला होगा, कि बंदे को उसी अमल पर उठाया जाएगा जिस पर उसे मौत आई। गौर से सुनिएगा व्यूअर्स, बड़ी बड़ी अहम बात है। ऊंटनियों पर सोने के कजावे होंगे, उनकी लगामें कीमती पत्थर की होंगी। यहाँ तो करो फर है, जाहो जलाल है, बड़ा प्राउड है जनाब, किसी को खातिर में नहीं लाते। तकब्बुर ना कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेब सीरीज है कयामत के बाद, आफ्टर जजमेंट डे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात करेंगे कि कयामत के दिन लोग अल्लाह की बारगाह में किस तरह पेश होंगे, महशर के मैदान में किन किन कंडीशंस के साथ आएंगे। आज की एपिसोड में ये बड़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वी विल नो द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ पीपल हु विल कम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। सबसे पहले जानते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे अंदाज पर कि आपकी हालत मुबारक क्या होगी। सुभान अल्लाह, हजरत सैयदना काबुल अहबार रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि आपकी आमद का महशर के दिन का मंजर ये होगा कि कोई फजर तुलू नहीं होती, मगर आसमान से 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं, वो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर से अपने परों को मस करते हैं, यानी टच करते हैं, और कब्र अनवर के गिर जमा होकर आपके लिए दुआ करते हैं और आप पर दुरूद पढ़ते हैं। हत्ता कि शाम हो जाती है तो ये वापस ऊपर चले जाते हैं और दूसरे 70,000 एंजल्स, दूसरे 70,000 फरिश्ते आते हैं और अगली सुबह तक यही करते हैं, यानी दुरूद सलाम पेश करते रहते हैं। और नाज़रीन, ये मामला कयामत तक होता रहेगा, मगर जब कयामत का दिन आएगा तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम उन 70,000 एंजल्स के झुरमट में, 70,000 फरिश्तों के झुरमट में मज़ारे पुर अनवार से बाहर तशरीफ़ लाएंगे और वो फरिश्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौकीर कर रहे होंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन मैं अबू बकर और उमर के दरमियान उठाया जाऊँगा, फिर मैं बकीय गरकद यानी जो ग्रेवयार्ड ऑफ जन्नतुल बकी है उनके पास आऊँगा और उन्हें भी उठाकर मेरे साथ कर दिया जाएगा, फिर मैं अहले मक्का की तरफ देखूंगा, हत्ता कि वो भी मेरे पास आ जाएंगे, पस मैं मक्का और मदीना वालों के दरमियान उठाया जाऊंगा। अब आप ये जानते हैं कि एट द डे ऑफ जजमेंट अहले ईमान के साथ क्या मामला होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों को न मौत के वक्त वहशत होगी, न कब्रों से उठाए जाने के वक्त, और न कब्रों में, गोया कि मैं देख रहा हूं कि चिंगार के वक्त यानी सूर फूंकते वक्त मुसलमान अपने सरों से मट्टी झाड़ते हुए ये कहते उठ रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हुज़्न, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे गम को दूर फरमा दिया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खबर दी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमान को उसकी मौत के वक्त, उसकी कब्र में और कब्र से निकलते वक्त उनसियत देता है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उन्हें कब्रों से निकलते वक्त देखेंगे तो अपने सरों से मट्टी को झाड़ते होंगे, कोई ला इलाहा वल्हम्दुलिल्लाह कह रहा होगा और उसके कहने वाले का चेहरा रोशन होगा और कोई यूं चीखता होगा कि हाय मेरी हसरत उस कोताही पर जो मैंने अल्लाह पाक के बारे में की, और उसका चेहरा सिया होगा। अल्लाह करीम हमें कयामत के दिन भी प्रोटेक्ट फरमाए। हदीस नबी में है कि बंदे को उसी अमल पर उठाया जाएगा जिस पर उसे मौत आई थी। ज़रा गौर से सुनिएगा व्यूअर्स, बड़ी बड़ी अहम बात है। हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला से मरफून रिवायत है कि जो दुनिया से नशे की हालत में गया वो कब्र में भी नशे की हालत में होगा और जब उसे कब्र से उठाया जाएगा उस वक्त भी वो नशे की हालत में होगा। व्यूअर्स, हर वक्त जो गुनाहों में मशगूल रहते हैं उन्हें इस बात से डरना चाहिए, इबरत पकड़नी चाहिए, गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी गुनाह की हालत में दुनिया से चले जाएं और उस वक्त अगर मौत आ गई तो उसी हालत में उसे उठाया जाएगा। तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हम वो काम छोड़ दें जिस हालत में मरना नहीं चाहते, क्योंकि अगर जिस हालत में मरेंगे उसी हालत में उठाया जाएगा। हजरत फदाला बिन उबैद रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो इन मरातिब यानी जिहाद, हज या किसी और नेक काम में किसी मरतबे पर मरेगा, बरोज़े कयामत उसी पर उठाया जाएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमान है, बेशक मौज़िन और तलबिया यानी लब्बैक पढ़ने वाले बरोज़े कयामत अपनी कब्रों से यूं उठेंगे कि मौज़िन अजान कहता होगा और तलबिया कहने वाला तलबिया पढ़ते हुए होगा। सुभान अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंज़ुल ईमान, जिस दिन हम परहेजगारों को रहमान की तरफ ले जाएंगे मेहमान बनाकर और मुजरिमों को जहन्नम की तरफ हाँकेंगे प्यासे। इसी तरह सूरह बनी इसराइल ने इरशाद फरमाया, ट्रांसलेशन फ्रॉम कंज़ुल ईमान, और हम उन्हें कयामत के दिन उनके मुंह के बल उठाएंगे, अंधे और गूंगे और बहरे, उनका ठिकाना जहन्नम है, जब कभी बुझने पर आएगी हम उसे और भड़का देंगे। अमीरुल मोमिनीन मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम ने इन आयत मुबारक की तिलावत करके इरशाद फरमाया। अब जरा इंटरप्रिटेशन सुनिएगा, इसकी वजाहत सुनिएगा। फरमाते खुदा की कसम, मेहमानों का हशर ना तो पैरों पर होगा और ना ही उन्हें हाँका जाएगा, बल्कि उनके लिए जन्नती ऊँटनियाँ लाई जाएंगी जिनकी मिसल मखलूक ने ना देखी होगी। ऊँटनियों पर सोने के कजावे होंगे, सोने की काठी होगी और उनकी लगामें जबरजद यानी कीमती पत्थर की होंगी। वो उन पर सवार होंगे हत्ता के जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। कैसा प्रोटोकॉल होगा कि लोग परेशान होंगे और ये अल्लाह के मेहमान जन्नती सवारियों पर जन्नत की तरफ जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तीन ग्रोहों यानी ग्रुप्स की सूरत में लोगों का हशर होगा। एक रगबत रखने वालों और डरने वालों का, दूसरा ग्रोह उन लोगों का जो ऊँटों पर 2, 3, 4 और 10 तक सवार होंगे, बाकी तीसरे ग्रोह को, थर्ड ग्रोह को आग इकट्ठा करेगी जहां वो लोग दिन गुजारेंगे, आग उनके साथ दिन गुजारेगी, जहां वो रात गुजारेंगे आग भी उनके साथ वहीं रात गुजारेगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का हशर चौपायों पर होगा, वो उन पर सवार होकर महशर तक पहुँचेंगे। हज़रत साले अलैहिस्सलाम को उनकी उसी हिस्टोरिकल ऊँटनी पर बिठाया जाएगा जिसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है। नबी पाक फरमाते हैं, मुझे बुराक पर उठाया जाएगा और मेरे दोनों बेटे सुभान अल्लाह इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों जन्नती ऊँटनियों पर सवार होंगे। हज़रत बिलाल भी जन्नती ऊँटनी पर सवार होकर सिर्फ अजान और 2 बरहक शहादतें देते आएंगे। हत्ता कि जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगे तो अगले पिछले ईमान वाले उनके साथ गवाही देंगे। चुनाचे जिसने दुनिया में इस गवाही को कबूल किया था उसकी गवाही कबूल कर ली जाएगी और जिसने दुनिया में उसे झुटलाया था उसकी कबूल नहीं की जाएगी। नाज़रीन, ये तो था ख़ास लोगों का अहवाल। कितना खूबसूरत अहवाल है कि वहाँ भी वो अमन में होंगे, चैन में होंगे, सवारियों पर होंगे। मगर आम मुसलमानों का भी क़यामत के दिन इस्तकबाल होगा। हज़रत सैयदना अमर बिन कैस मलाई रहमतुल्लाहि तआला बयान करते हैं कि मुसलमान जब अपनी कब्र से निकलेगा तो उसका अमल खूबसूरत शक्ल और बेहतरीन खुशबू की सूरत में होगा। उसे वेलकम करेगा और उससे पूछेगा, तुम मुझे पहचानते हो? बंदा कहेगा, नहीं, मगर इतना ज़रूर है कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी बू को मुअत्तर और सूरत को बड़ा हसीन बनाया है। वो कहेगा, दुनिया में भी तुम इसी तरह थे, मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ। जब तक तुम दुनिया में रहे मैं तुम पर सवार रहा, आज के दिन तुम मुझ पर सवार हो जाओ। जबकि जो गैर मुस्लिम होगा, नॉन बिलीवर होंगे, उनका अमल उसका इस्तकबाल बदतरीन सूरत और सख्त बदबू के साथ करेगा और पूछेगा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? काफिर कहेगा, नहीं, मगर इतना ज़रूर है कि अल्लाह करीम ने तुम्हें बदसूरत बनाया और तुम्हारी बू को इंतहाई बदबूदार बनाया। वो कहेगा, तुम भी दुनिया में ऐसे ही थे, मैं तुम्हारा बुरा अमल हूँ। दुनिया में तुम मुझ पर सवार रहे, आज मैं तुम पर सवार होऊंगा। अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक के नज़दीक महबूब तरीन लोग गुरबा हैं। आज की गई गुरबा कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, वो लोग जो अपना दीन बचाने के लिए राह फरार इख्तियार करते हैं। बरोज़ क़यामत उन लोगों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जमा किया जाएगा। एक और जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम का इरशाद फरमाया, बरोज़ क़यामत उलमा के सामने मुआद बिन जबल रदी अल्लाह तआला का एक मुनफरिद मकाम होगा। सुनिएगा नाज़रीन, फरमाया, एक मकाम पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में हलाल व हराम का सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले मुआद बिन जबल रदी अल्लाह तआला है, अजीम सहाबी हैं। हज़रत अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं कहता हूँ कि इसी का नतीजा है कि हज़रत सैयदना मुआज़ रदियल्लाहु तआला बरोज़ क़यामत तमाम उलमा के आगे होंगे, उलमा आपके पीछे पीछे होंगे। और ये भी मालूम हो गया कि हज़रत सैयदना मुआज़ रदियल्लाहु तआला जिन उलमा के आगे आगे जलवा फरमा होंगे वो हलाल व हराम का इल्म रखने वाले उलमा होंगे और यही उलमा हामिलीन शरीयत हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन सलाम रदियल्लाहु तआला बयान करते हैं, बरोज़े क़यामत हर नेक व बद को खड़े होने का हुक्म मिलेगा सिवाय सूद खोर के। वो ऐसे स्टैंड अप होगा, ऐसे खड़ा होगा जैसे वो शख्स खड़ा होता है जैसे आसेब ने छूकर हवास ख़राब कर दिए हों, जिसको हम नहीं देखते कोई शख्स पागल है, उसके उसके हवास ही नहीं होते। फरमाया, सूद वाला क़यामत के जरिए इस तरह होगा और उसका गला घूटा जा रहा हो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत एक कौम को अल्लाह पाक उनकी कब्रों से इस हालत में उठाएगा कि उनके मुंह से भड़कती हुई आग निकल रही होगी। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, तर्जमाए कंजुल ईमान, वो जो यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो तो अपने पेट में निरी आग भरते हैं। اللہ اکبر. ناظرین یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. پلیز ایسا نہ کیجیے, توبہ کیجیے. کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ کریم بروز قیامت تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چھوٹی چیونٹیوں کی مثل مگر انسانی صورت میں اٹھایا جائے گا, ہر جگہ انہیں ذلت گھیرے ہوگی, پھر انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا, ان پر آگ بلند ہوگی اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ یعنی خون اور پیپ پلایا جائے گا. اللہ اکبر. آج جو پراؤڈ کرتے ہیں, آج جو تکبر کرتے ہیں, وہ غور کریں, یہاں تو کرو فر ہے, جاہو جلال ہے, بڑا پراؤڈ ہے جناب, کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. تکبر نہ کیجیے, قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں انہیں لایا جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے سوال سے بے نیاز کرنے والی چیز پاس ہونے کے باوجود بھی سوال کیا, یعنی بلا ضرورت اور کوئی مجبوری نہیں, پھر بھی لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں, مانگ رہے ہوتے ہیں, تو فرمایا تو بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا سوال اس کے چہرے پر خراشے بن کر ظاہر ہو رہا ہوگا. اگین لیسن ہے اس میں کہ کیوں لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ, حالانکہ ہوتا ہے ان کے پاس. آج تو لوگوں کو ہم دھوکہ دے دیں گے, آج تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا, وہ مستحق سمجھ کر مدد کر دیں گے. بعض اوقات تو ایسی اسٹوریز بھی سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں کہ کسی بیگر کو, کسی فقیر کو جب پکڑا گیا تو پتہ چلا اس کے پاس لاکھوں روپے نکل رہے ہیں. تو اگر اللہ نے دیا ہے تو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, بلکہ سچی بات یہ ہے دنیا والوں سے کیوں مانگنا ہے, اللہ سے عرض کریں نا, خودداری ہونی چاہیے. حضرت سیدنا زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, جس نے اس لیے قرآن پڑھا کہ اس کے ذریعے لوگوں سے کھائے, تو بروز قیامت وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے کی ہڈیوں پر بالکل گوشت نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہم اپنے سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کریں. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس نے آدھی بات کے ذریعے بھی کسی مسلمان کے قتل میں مدد کی ہوگی. اب یہ ایک اور کنڈیشن سنیے گا, بروز قیامت وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا, یہ شخص اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہے. غور کیجیے, آج تو بے جا قتل بھی کیے جا رہے ہیں, تکلیف بھی پہنچائی جا رہی ہے, ایسا نہ کیجیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ظلم سے بچائے, ظلم کرنے سے بھی بچائے اور ظالموں کے ظلم سے بھی بچائے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اب ایک اور کنڈیشن سمجھیے, جس نے قبلے کی طرف تھوکا ہوگا وہ بروز قیامت اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا. اب ظاہر اس کی کنڈیشنز ہیں کہ جناب معاذ اللہ معلوم ہونے کے باوجود اور بے ادبی کی نیت سے یہ کام کرے گا, تو ہمیں بے ادبی سے بچنا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس کے پاس دو بیویاں ہوں اور پھر وہ ان کے درمیان عدل سے کام نہ لے, تو قیامت کے دن وہ یوں آئے گا کہ اس کا آدھا جو دھڑ ہوگا وہ شل ہوگا, اور ایک روایت میں کہ اس کا آدھا دھڑ گر چکا ہوگا. آج کسی کو پیرالائز کوئی ہو جائے, فالج ہو جائے, تو کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. قیامت کے دن ایسا شخص آدھا اس کا دھڑ یا تو گر چکا ہوگا یا وہ مفلوج ہو چکا ہوگا, شل ہو چکا ہوگا. اگر اللہ نے آپ کو ایک سے زائد ازواج دی ہیں تو انصاف کیجیے. یہ میں جو آپ کو الگ الگ حدیثیں سنا رہا ہوں نا, تاکہ آپ کو کنڈیشنز پتہ چلیں. پہلے ہم نے اللہ کے محبوب لوگوں کا پروٹوکول سنا, ان پر کیسی نعمتیں ہوں گی, وہ کیسے سکون میں ہوں گے. مگر یہ وہ افراد ہیں کہ جو یہ مسٹیکس کرنے والے ہیں, یہ غلطیاں کرنے والے ہیں, اور ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا, کس حالت میں آئیں گے, وہ ہم بتا رہے ہیں. اور اللہ کی رحمت ہے نا کہ ہمیں دنیا میں پتہ چل گیا ہے, تو ہم ان چیزوں سے بچنے لگ جائیں. ایک اور حدیث پاک سنیے, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منہ پر عیب لگانے والے, پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے, چغلی کھانے والے اور نیک لوگوں پر تہمت لگانے والوں کو اللہ پاک بروز قیامت کتوں کی شکل میں اٹھائے گا. اب کون چاہتا ہے کہ وہ اس شکل میں اٹھے, تو پھر یہ کام نہ کرے نا. روایت میں آتا ہے کہ جو اس حالت میں مرا کہ وہ منہ پر اور پیٹھ پیچھے لوگوں کے عیب بیان کرنے والا ہو اور لوگوں کے برے نام رکھنے والا ہو, تو بروز قیامت اس کی علامت یعنی اس کا سمبل یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کی دونوں بانچوں, بانچے کہتے ہیں یہ دونوں ہونٹوں کے جو کونے ہوتے ہیں نا, اسے لے کر اس کی ناک تک داغ لگائے گا. کیسے برداشت ہوں گی چیزیں. آج لوگ عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں, کسی طرح کسی کا عیب پتہ چل جائے تو جناب سوشل میڈیا پہ ڈال دیں, اسے وائرل کر دیں. حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی کی بالشت بھر زمین بھی ناحق لی ہوگی, بروز قیامت ساتوں زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. آج تو زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے اور لوگ بڑے کرو فر سے کہتے ہیں جو کرنا کر لو, میں مجھ سے کوئی نہیں واپس لے سکتا. ٹھیک ہے جناب, آج آپ سے کوئی واپس نہیں لے سکتا, مگر کیا بروز قیامت اس پنشمنٹ کو برداشت کر سکیں گے؟ جس کا حق نکلتا ہے نا دنیا میں دے دیجئے, معافی مانگ لیجئے, اس دن ہم کچھ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے. اللہ کرے کہ ایسے گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی رضا والے بن کر ہم قیامت کے دن جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے مقبولین میں شامل فرما لے. अब आइए जरा अपनी एपिसोड को एंड की तरफ लिए चलते हैं कि लास्ट आपको रिवायत सुनाता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो 10 लोगों का भी अमीर होगा बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक उसे इस हालत में उठाएगा कि उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन के साथ बंधे हुए होंगे। अगर वो नेक होगा तो उसकी बंदिश खोल दी जाएगी, और अगर वो बदकार होगा तो इस बंदिश पर एक और बंदिश का इजाफा कर दिया जाएगा। अब वो लोग जो साहिब इक्तदार हैं, वो लोग जो कंट्रोल रखते हैं, जो लोगों के अमीर हैं या हेड हैं, उन्हें सोचना है कि इंसाफ करना है, वरना ऐसा ना हो कि नाइंसाफी, बायस हो जाते हैं, अपने पसंद के फैसले कर रहे होते हैं। अगर अल्लाह ने मौका दिया है ना किसी का लीडर बनने का, किसी का निगरान बनने का, इक्तदार दिया है, तो इंसाफ करना है, वरना कयामत के दिन ये सज़ा बर्दाश्त नहीं होगी। नाज़रीन, दूसरी एपिसोड हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई। अगली एपिसोड को इंशाल्लाह आपने देखना है, क्योंकि उसमें हम अच्छे और नेक आमाल करने वालों के बारे में सुनेंगे, वो कैसे अल्लाह की बारगाह में आएंगे, उन पर क्या क्या इनामात होंगी, क्या क्या नवाजिशों की बारिश होगी, और इंशाल्लाह फिर बहुत सारी मालूमात के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम महशर में हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमाए, हमारी हमें पूरी मखलूक के सामने रुसवा होने से बचाए, और प्यारे नबियों और अपने मकबूलीन के साथ हमारा हशर फरमाए। आज भी जो हमने गुफ्तगू की है, अगर उसके रेफरेंसेज आप जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इसे शेयर भी कीजिए अच्छी नीयतों के साथ। इंशाल्लाह ये ऐसी शेयरिंग है जो इंशाल्लाह आपके लिए सवाब का भी बाइस बनेगी।